Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's Mensa.
तो जी धन्यवाद
जी. आज बात करेंगे आओ पेट लगाएं, या मेरे शब्दों में कहें तो आओ पेट बचाएं.
जी नमस्कार सबको. हेलो वसीम जी. हेलो सुजॉय जी, कैसे हैं?
हेलो दीपिका जी, बस बढ़िया.
वेलकम वेलकम टू द शो.
थैंक यू.
हेलो मरियम जी, एंड ये अभी हमारे साथ जुड़े हैं बजरंग जी. कोई वसीम जी?
जी दीपिका जी, बजरंग जी का स्वागत है
जी. तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और जिसका टॉपिक है आओ पेड़ लगाएं. और पेड़ लगाएंगे, और उसके बाद जैसा कि बजरंग जी ने कहा, आओ पेड़ बचाएं, कुछ भी हो सकता है. तो हमारा आज का टॉपिक है आओ पेड़ लगाएं.
जी तो शुरुआत करते हैं
जी.
दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग. ये है मेंजा पर कहानियों का बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है कहानी बुनो, और आज है कहानी बुनो का 8वां एपिसोड. मैं हूं वसीम अकरम, और मेरे साथ हैं स्टोरी नरेटर दीपिका जी, आज के कहानीकार सुजॉय जी, और हमारे स्पीकर बजरंग जी. मरियम जी, आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जिन्हें आप बुनते हैं, यानी हमारे श्रोता बुनते हैं. और फिर बात करते हैं उस कहानीकार से, और जानते हैं कहानी लिखने की छोटी से छोटी मगर बेहद जरूरी बातें, कि कैसे कहानियां बुने, छोटी से छोटी प्लॉट पर, थीम पर किस तरीके से कहानियां लिखी जाएं, उनके अंदर फीलिंग कैसी हो, किस तरीके से फीलिंग को पैदा की जाए, इसके बारे में बात करते हैं. आज की कहानी का थीम है आओ पेड़ लगाएं. दोस्तों पेड़ हमारी जिंदगी में कुदरत का ना एक ऐसा तोहफा है जिसकी बेकदरी हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल सकती है. हमारे आसपास दरख्त ना हो तो हवा बिल्कुल भी साफ ना हो पाएगी. पर्यावरण के लिए तो दरख्त किसी मुहाफिज से कम नहीं है. फल फूल के साथ ही अनेक बीमारियों के लिए दवाएं भी पेड़ पौधों से ही बनती हैं. और सबसे बुनियादी बात, साइंस के मुताबिक, जैसा कि साइंस मानता है कि हमारे आसपास मौजूद जहरीली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. कितनी खुशनसीब बात है ना हमारे लिए कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है और हम सांस ले पाते हैं, वही ऑक्सीजन जिन पर हमारी सांसें मुनहसर होती हैं. दरख्त ना हो तो बारिश भी ना आए, फिर तो जल के बिना हमारे जीवन का ख्याल भी यूं ही जाता रहेगा. पेड़ ही इस धरती के कटाव को रोकते हैं, और क्या ही खूबसूरत बात है कि कई चिड़ियों और जानवरों और कीट पतंगों का घर ये पेड़ ही होते हैं. इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. पेड़ हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारी हर सांस पेड़ से निकलने वाले ऑक्सीजन की कर्जदार है. हमारे गुल्लू चाचा, वही यानी गुलजार साहब, ने आम के पेड़ पर एक बहुत ही खूबसूरत नज्म लिखी है. वैसे तो इस नज्म का उन्वान आम है, लेकिन हम अगर इसकी कैफियत को समझें, इस नज्म की कैफियत को समझें, तो मेरा ख्याल है कि जंगल काटे जाने की इस दौर में यह हर पेड़ के लिए लिखी गई एक नज्म है. मैं इसे आप सबको सुनाना चाहूंगा, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे. मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक आम का पेड़ कभी, मोड़ पे देखा है बूढ़ा सा एक आम का पेड़ कभी, मेरा वाकिफ है बहुत सालों से. मैं जानता हूं, जब मैं छोटा था तो एक आम चुराने के लिए परली दीवार से कंधों पे चढ़ा था उसके. जाने दुखती हुई किस शाख से मेरा पांव लगा, थाड़ से फेंक दिया था मुझे नीचे उसने. मैंने खुन्नस में बहुत फेंके थे पत्थर उस पर. मेरी शादी पे मुझे याद है शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने. और जब हामला थी बीबी, हामला यानी प्रेग्नेंट, और जब हामला थी बीबा तो दोपहर में हर दिन मेरी बीबी की तरफ कैरियां फेंकी थी उसी ने. वक्त के साथ सभी फूल सभी पत्ते गए, तब भी लजाता था जब मुन्ने से कहती थी बीबा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, पेड़ का फल है. और अब भी लजाता हूं जब मोड़ से गुजरता हूं, खांस कर कहता है, क्यों सर के सभी बाल गए? सुबह से काट रहे हैं वो कमेटी वाले, मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको. सुबह से काट रहे हैं उस पेड़ को कमेटी वाले, मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको। दीपिका जी ये है नज्म गुलजार साहब की जो 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 उन्होंने दर्द बयान किया है कि पेड़ काटे जाने का दर्द उनको कैसा महसूस हो रहा था। एक पूरी जिंदगी उस पेड़ के इर्द गिर्द उनकी गुजरी हुई होगी, देखा होगा उन्होंने बचपन से लेके जवानी फिर बुढ़ापे तक की जिंदगी, उस आम वो आम उसका गवाह रहा होगा उनकी जिंदगी का।
जी बिल्कुल,
है कि नहीं? तो अब बढ़ते हैं हम, मुझे लगता है कि अब कहानी पहले सुन लेनी चाहिए फिर बाकी बातें।
जी
दीपिका जी।
जी वसीम जी, आज की कहानी हमें सुजॉय जी ने लिख के भेजी है। यूं तो बहुत सी कहानियां हमारे पास आई थी, लेकिन जो सबसे खूबसूरती से और एक मैसेज, जिसे कहते हैं ना, कहानियां मनोरंजन भी देती हैं और साथ में एक संदेश हो उसमें, तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। तो इसी तरह की कहानी हमें बहुत ही, जिनकी पसंद आई है, सुजॉय जी की कहानी है, जो कि आज मैं पढ़ना चाहूंगी। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एक शेर है जो शायद आज के दौर में और इस समय जो मौसम चल रहा है उस पर बहुत सूट करेगा। तो इस तरह से है कि कुछ अब धूप का ऐसा मिजाज बिगड़ा है, कुछ अब धूप का ऐसा मिजाज बिगड़ा है, दरख्त भी तो यहाँ साएबान मांगते हैं।
वाह,
साएबान मतलब साया,
साया तो, छाया।
बिल्कुल, और इसी से मैं कहानी शुरू करना चाहूंगी। सुजॉय जी ने लिखी है, आओ पेड़ लगाएं टॉपिक पर। यह कहानी है राकेश की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास किसी कस्बे में एक संयुक्त परिवार में उसका जन्म हुआ और वहीं वो पला बढ़ा। उस घर से लगा एक सुंदर बागीचा भी था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे थे। सामने कच्ची सड़क, उसके आगे बड़ा सा मैदान जहां वो अपने दोस्तों के साथ शाम को खेला करता था। मैदान के किनारे तरह तरह के बड़े पेड़ न केवल मैदान की शोभा बढ़ाते, बल्कि गर्मी के मौसम में खेलते खेलते जब सब थक जाते तो पेड़ों की ठंडी छाया में बैठकर अपनी थकावट दूर करते। आम, अमरूद और बेर के मौसमों में ये पेड़ जैसे झोली भर भर कर बच्चों की भूख और प्यास मिटाते। समय बहता चला गया। राकेश और उसके दोस्त बड़े हो गए। स्कूल की दहलीज पार कर आगे की पढ़ाई के लिए सब इधर उधर बिखर गए। मैदान में उनकी जगह अगली पीढ़ी के बच्चों ने ले ली। वे पेड़ अपनी ममता अब नए बच्चों पर लौटाने लगी। राकेश का संयुक्त परिवार भी बढ़ने लगा था। घर में जगह कम पड़ने लगी तो आंगन में अतिरिक्त कमरे बनवाए गए, जिसके लिए कई हरे भरे पेड़ उखाड़ने पड़े। उससे भी जब बात न बनी तो बागीचे में मकान का विस्तार हुआ और जिसके लिए बलि वेदी पर चढ़े बागीचे के बड़े भूढ़े पेड़। जाने कितने सालों से इस मकान को धूप और बारिश से बचाते इन पेड़ों को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि जिन पर उन्होंने अपनी इतनी ममता लुटाई उन्हें काटते समय उनके हाथ जरा से भी नहीं कांपे। राकेश के घर का बागीचा उजड़ गया। गांव भी धीरे धीरे शहर में तब्दील होने लगा। शहरीकरण के चलते मैदान पर अपार्टमेंट बनने लगे और मैदान के चारों तरफ जो हरे भरे पेड़ थे अब वहां कार पार्किंग है। राकेश का वह हरा भरा आंगन, बागीचा, सामने का खुला मैदान, उससे लगे बेशुमार पेड़ अब जैसे एक सपना बनकर रह गया। चारों ओर बस कंक्रीट का जंगल था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर राकेश एक बड़े शहर में जा बसा। संयुक्त परिवार को छोड़कर अब वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा। कुछ ही सालों के अंदर किस्मत ने उसे मौका दिया अमेरिका जाने का। अमेरिका जाने से पहले उसके मन में अमेरिका की जो छवि थी वो कुछ ऐसी थी कि अमेरिका एक शहर अत्याधुनिक तकनीकों से परिपूर्ण और उन्नत होगा, जहां ईंट पत्थर से बनी इमारतों के भीतर जिंदगी के तमाम सुख साधन मौजूद होंगे। पर अमेरिका पहुंचने पर उसने वहां की जो छवि देखी उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यही असली अमेरिका है। इतनी प्रगति और आधुनिक जीवन यापन शैली के बावजूद लोगों का प्रकृति प्रेम वहां देखते ही बनता है। बिल्कुल विपरीत, जैसा सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत। अमेरिका में राकेश और उसका परिवार जिस घर में रहता है उसकी बालकनी से सामने वाला घर और उससे लगा बगीचा साफ दिखाई देता है। वो रोज देखता है कि उस बागीचे में एक बड़ी सी छायादार मैपल पेड़ के नीचे एक वृद्ध जो है एक कुर्सी में बैठकर घंटों किताबें और अखबार पढ़ा करते हैं। कुछ ही समय में जब उनसे उनकी जान पहचान बढ़ी तब उस पेड़ के साथ उस वृद्ध ने अपने रिश्ते की जो बात बताई और जो राकेश को पता चली उससे राकेश न सिर्फ हैरान हुआ बल्कि उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी जो उसे अंदर ही अंदर कुरेदने लगी। वो सोचने लगा कि बताओ जिस अमेरिका के बारे में मैंने क्या क्या सोचा था लेकिन यहां तो कुछ और ही नजारा नजर आ रहा है। वृद्ध ने उसे बताया कि वह जो मैपल का पेड़ है वह उनके दादाजी का लगाया हुआ है और जब उनका जन्म हुआ था उस समय दादाजी ने उसको लगाया था और पेड़ के साथ ही वो पले बड़े। बचपन में वो उस पेड़ को पानी दिया करते थे। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी उसके दादाजी ने उन्हीं को सौंप दी थी। वो पतझड़ में सूखे पत्ते समेटते, ठंड में जब पेड़ में केवल टहनियां रह जाती तो उनका मन भी उदास हो जाता और बसंत के आते ही जब पेड़ पर पहला पत्ता निकलता तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहता। वृद्ध ने अपनी लकड़ी की छड़ी दिखाते हुए कहा कि यह छड़ी जो अब मेरे बुढ़ापे का संबल है इसी पेड़ की टहनी से बनी है और ये जो कुर्सी जिस पर मैं अधिकतर समय बैठा रहता हूं ना और जो बैठकर मैं अखबार और किताबें पढ़ता हूं वो भी इसी लकड़ी से बनी है। इस पेड़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक बात कहूं बेटा, पेड़ पौधों से प्यार करोगे तो ये भी तुमसे प्यार करेंगे और आजीवन तुम पर अपना सब कुछ लुटाते रहेंगे। वृद्ध की ये बातें सुनकर राकेश का मन विद्युत वेग से अपने उस संयुक्त परिवार वाले घर पर पहुंच गया जहां पर उसके ताऊ जी, पिताजी और चाचाओं ने मिलकर घर का विस्तार करने के लिए सारे पेड़ों को कटा दिया था और जहां शहरीकरण के नाम पर कुछ लालची लोगों ने मैदान हड़प लिए और उससे लगे सारे पेड़ काट डाले। वृद्ध से विदा लेकर घर वापस लौटते समय उसका मन उदास हो गया। एक अपराध बोध उसके मन में काम करने लगा। क्या वे पेड़ कभी उनके परिवार को माफ कर पाएंगे? शायद नहीं। पर राकेश ने एक फैसला लिया कि अब भारत वापस लौटकर सबसे पहले अपने उस गांव में वापस जाएंगे और जैसे भी हो जहां भी जगह मिले कम से कम 100 पेड़ लगाकर अपने परिवार से हुए पाप का प्रायश्चित करेंगे। मन को हल्का करने के लिए मोबाइल ऐप पर विविध भारती सुनने लगे तो संयोग से गीत बज रहा था। कभी पेड़ का छाया पेड़ के काम ना आया, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया। इसी तरह वो इस गीत को सुनने लगे और आगे उस गीत में था, सेवा में सभी की उसने जीवन बिताया, कोई कितने भी फल तोड़े उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत कहानी सुजॉय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया और सुजय जो जी को भी, बहुत खूबसूरत कहानी इन्होंने लिखी है। दादाजी का नाम आया तो मुझे मेरा मेरे बचपन का एक वाक्य याद आ रहा है।
वो कहते हैं ना कि हम चाहे किसी भी शहर में रहने लगे हों, लेकिन हमारे भीतर एक गांव हमेशा जिंदा रहता है, है कि नहीं सुजोय जी?
जी, जी
तो इस कहानी से मुझे वो वाकया याद आ रहा है, मैं लगता है कि मुझे सुना दूं कि मेरे बचपन के दिनों में मेरे द्वार पर नीम के कई पेड़ थे जिन्हें शायद मेरे दादाजी ने ही लगाया था। हम सब भाई बहन उन पेड़ों के नीचे तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी गर्मी के दिनों में उधर से गुजरते हुए लोग उसकी छांव में ठहर कर आराम भी करते थे, फिर अपने रास्ते निकल जाते थे। हम लोग उनसे हंसी ठिठोली कर लेते थे और उनके साथ खेल लेते थे। रोज रोज दातून तोड़ने के साथ ही दादाजी जब तब उनकी शाख जो है पत्तियों से लोगों की बीमारियों का इलाज भी करते थे। लोग दूर दूर से आते थे उनसे इलाज कराने के लिए। जब द्वार पर चाचा जी का घर बनने लगा और नीम के सारे पेड़ों को काटा जाने लगा तो दादाजी के साथ हम सब बच्चे भी बहुत दुखी हुए। हम बच्चों को उस वक्त पेड़ के महत्व के बारे में कोई इतनी जानकारी तो थी नहीं, अगर कुछ था तो वो एक लगाव था, क्योंकि पेड़ ही हमारे बचपन के साथी भी थे और हमारी शरारतों, बदमाशियों और तमाम कारगुजारियों के गवाह भी थे। तो एक लगाव सा था, बहुत दुख हुआ। और इसलिए लगता है कि हमें पेड़ काटने से ज्यादा पेड़ बचाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें खुशहाल जिंदगी दे सके, सांसों से भरी जिंदगी दे सके। शायद एक शायर ने क्या खूब कहा है कि तुम लगाते चलो दरख्त जिधर से गुजरो, तुम लगाते चलो दरख्त जिधर से गुजरो, उसके साये में जो बैठेगा दुआई देगा,
दुआई देगा। वाह वाह, बहुत खूब
जी दीपिका जी।
जी
अगले टॉपिक के से पहले हम चाहेंगे कि सुजोय जी से बात करें और जानें उनसे कि ये कहानी उनके दिमाग में कैसी आई।
जी वसीम जी, एक्चुअली कहानी का जो पहला हिस्सा है जो गांव वाला, तो वो तो मैंने खुद ही देखा था। अब कलकत्ते में हमारे घर के बगल में एक परिवार था, तो जैसे जैसे उनके बेटे बड़े हुए उनकी शादियां हुई तो जगह कम पड़ने लगी घर में, तो उनकी वैसी हैसियत नहीं थी कि वो अलग प्लॉट खरीदें या कोई फ्लैट खरीदें, तो उन्होंने अपने ही बगीचे में अपने घर का मतलब एक्सटेंशन किया और पेड़ काटे। तो जो कहानी का जो पहला भाग है वो यहीं से मैंने लिया था, और जो दूसरा हिस्सा है वो एक्चुअली जो फेसबुक पे जो मेमेज आते हैं ना आजकल, जैसे कार्टून्स होते हैं, जैसे वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे, तो उसमें एक था वैसा ही मेमे कि जिसमें बाईं तरफ था एक बच्चा पेड़ पे एक पौधे में पौधे को पानी दे रहा है, और दूसरे तरफ था कि जब वो बच्चा वही बच्चा जब बूढ़ा हुआ तो वो उसी पेड़ की टहनी से बनी छड़ी को लेके वो चल रहा है बुढ़ापे में। तो वहां से मुझे दूसरा जो भाग है कहानी का उसका आइडिया मिला मुझे, तो दोनों को जोड़कर मैंने ये कहानी बना दी।
बहुत
तो श्रोताओं, हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, और सीखने के लिए ये जरूरी है कि सुजोय जी की कि कहानी कैसे हमारे आसपास इर्द गिर्द रहती हैं और हम कैसे उसे कहानी उसको कहानी की शक्ल में अच्छे अच्छे लफ्ज देकर एक कहानी बुन सकें। तो हमारा यही उद्देश्य भी है कि हम लोगों से कहानियां खूब लिखवाएं, उनकी फीलिंग्स को बाहर ले आए, है ना। तो अब दीपिका जी अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं।
उससे पहले जब हम अगले टॉपिक पे जाएं, जो जी। सुजोय जी ने कहानी लिखी है उससे मुझे एक ना छोटी सी कविता याद आई जो कि मैं अपने क्लास में बच्चों को अक्सर सुनाया करती हूँ।
बिल्कुल सुनाया आप।
सच में बहुत खूबसूरत कविता है और जो आज का विषय है उस पर बहुत सूट करती है। तो कविता इस तरह है कि सुनो सुनो क्या चिड़िया कहती, सुनो सुनो क्या चिड़िया कहती, हवा सुहानी अब ना बहती, आंगन की शोभा हरियाली, पेड़ों से अब आंगन खाली, पीपल बरगद की छांव नहीं, हरा भरा अपना गांव नहीं, चिड़िया ने अब गाना छोड़ा, घर आंगन में आना छोड़ा, चिड़िया ने अब गाना छोड़ा, घर आंगन में आना छोड़ा, चिड़िया को हम चलो मनाएं, धरती पर फिर पेड़ लगाएं, चिड़िया को हम चलो मनाएं, धरती पर फिर पेड़ लगाएं।
क्या बात है, क्या बात, बहुत खूबसूरत कविता है। और दीपिका जी, हम ये महसूस कर रहे हैं कि पहले गांव में रहते थे तब चिड़ियों की आवाज से हमारी नींद खुलती थी सुबह सुबह, अब तो शहर में ये चीज हमें मिलती नहीं है, और मोबाइल ही उसके लिए काफी है कि किसी न किसी का फोन आ जाता है और हमारी नींद खुल जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम पेड़ लगाएं। अगला टॉपिक है हमारा पेड़ से ही रिलेटेड है और वो है,
लेकिन मौसम से रिलेटेड भी है।
मौसम से रिलेटेड है, हाँ, मौसम बेसिकली मौसमी फल से रिलेटेड है और वो है
मौसमी फल।
किस्सा आम।
आम
वैसे तो आम की एक कहानी है, लेकिन हमें जानना है कि आम से जुड़ी आपकी कहानी क्या है। मतलब जो सुन रहे हैं श्रोता हमारे, वो जो लिखेंगे कहानी, उनकी कहानी क्या है जो आम से जुड़ी हो। तो महज 500 से 700 शब्दों में कहानी लिख भेजिए हमें, और ऐसी कहानी जिसका मुख्य किरदार आम ही हो, या आम से अपने जुड़ाव के बारे में।
आम में कोई भी मतलब आपके साथ आम के साथ घटी घटना जो आम से जुड़ी हो, जैसे कभी आपने पेड़ से आम तोड़ा हो तो क्या पता माली ने आपकी पिटाई करी हो, या आप गिर गए हो, आपके साथ कोई हादसा हुआ हो, तो या जैसे हम आम खा रहे हैं, आम की गुठली चूस रहे हैं और वो उछल के हमारी हाथ से निकल के किसी और की प्लेट में कूद गई, तो किसी भी तरह की कोई भी घटना आपके साथ आम से जुड़ी हुई अगर है तो आप उसको बहुत खूबसूरत मतलब उसमें कहानी के रूप में लिखकर हमें भेज दीजिए।
आपकी आपकी इन बातों से मुझे एक और वाकया याद आ रहा है मेरे बचपन का, कि जब हम आम की कैरियां खाते थे तो उसके जो बीज होते थे उसको तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच दबाकर उछालते थे, तो वो जिस साइड में जाती थी गुठली, तो हम लोग कहते थे, या मतलब मान लीजिए मैंने उछाला तो मेरे दोस्त कहते थे, ओ तो तुम्हारी शादी उस तरफ होगी, यानी हम लोग उस तरफ बारात चलेंगे।
तो वसीम जी, तो उसी तरफ गई या कहीं और गई? कहानी है।
इतना तो याद नहीं, मगर हाँ ये भी एक कहानी है। तो आम से जुड़े इसी तरह की कहानियां आप बुने, अपनी जिंदगी से जुड़ी कहानियां बुने, वो आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां बहुत खूबसूरत होती हैं, फील देती हैं और लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए कहानी, है ना। तो मंडे तक हमें लिख भेजे, हमारी मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com kahanibuno@gmail.com। इस पर आप 500 से 700 शब्द के बीच कहानी लिख भेजें और फिर हम आगे,
और हमारी कहानी का विषय है किस्साए आम। इस बार हमने
किस्साए आम,
किस्साए आम, तो कोई खास घटना आम पर लिख के भेज दीजिए।
जी सुजोय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक से बारे में?
जी आम तो है ही सबका फेवरेट फ्रूट। अब यहाँ पे, अब जब यहाँ पे, अब मैं अमेरिका में हूँ तो यहाँ पे आम तो दिख रहे हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, जैसे वैसे नहीं जैसे इंडिया में हम खाते हैं, और ना ही वैसी क्वालिटी होगी मुझे नहीं लगता। तो वो तो इंडिया, मतलब आम के लिए तो इंडिया ही मतलब स्वर्ग है, मतलब आम के लिए तो
ज्यादातर, तो ज्यादा
इस बार मिस करेंगे आम
जाता है ना आम को विदेशों में, तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि हमारे यहाँ खेती भी बहुत होती है। पिछले साल में अमरोहा गया था आम खाने के लिए, स्पेशली आम खाने के लिए आम के बागान में गया हुआ था, ठीक है, वो जॉन एलिया का शहर है अमरोहा, बड़ा मजा आया आम का सब बाग। तो उसकी भी एक कहानी है। बहरहाल मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता कुछ बेहतरीन कहानी लिखें, कुछ खास कहानी लिखें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई, आम से जुड़ी हुई, आम खाने से जुड़ी हुई, आम की कैरियों से जुड़ी हुई, आम के चटनी से जुड़ी हुई, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर वो लिख सकते हैं, और बेफिक्र होकर लिखकर हमें भेजें हमारी मेल आईडी पर, ठीक है। दीपिका जी, अब टाइम हो रहा है।
हाँ जी, बस सभी लिसनर का धन्यवाद करना चाहेंगे, और फिर से याद दिला दूं किस्साए आम अगला टॉपिक है हमारा, जिसमें आम से जुड़े कोई भी खास आपके साथ किस्सा हुआ हो उसको आप हमें लिख के भेज दीजिए kahanibuno@gmail.com पे मंडे तक।
जी, और इसके साथ ही मैं श्रोताओं से ये भी कहूंगा कि कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, या कुछ और वो कहना चाह रहे हो, या वो टॉपिक सुझाना चाह रहे हो कि इस पर लिखी जा सकती है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि हम ऐसे टॉपिक चुने जिनसे, जिन पर कहानियां लिखी जाए तो कम से कम उसमें एक मैसेज हो। तो हम श्रोताओं से ये आह्वान करते हैं कि वो हमें लिख भेजें, अगर कहानी ना लिखें तो कम से कम अपने सुझाव तो जरूर लिख भेजें इस प्रोग्राम के बारे में, कि हम और कितना बेहतर इस प्रोग्राम को बना सकते हैं।
जैसे आज की सुजॉय, जैसे आज की सुजॉय जी की कहानी थी, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत संदेश था, तो इसी तरह संदेश से जुड़ी हुई कहानियां जो मनोरंजन भी करें और संदेश भी दें। तो बहुत बहुत तमाम शुक्रिया
जी, तमाम श्रोताओं का शुक्रिया, और सुजॉय जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेहतरीन कहानी,
सभी सुनने वालों का बहुत शुक्रिया जो आकर जुड़े, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई आप सबने। तो सुजॉय जी का खास शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुजॉय जी, आपने बहुत खूबसूरत कहानी।
मरियम
थैंक यू, आप स्पीकर पैनल पे हैं
जी।
तो मिलते हैं अगली बार कुछ खास किस्से लेकर, किस्साए आम में। गुड नाइट, थैंक यू सो मच,
थैंक यू।
इफ यू एंजॉयड दिस, डाउनलोड द मेंसा ऐप एंड स्टार्ट योर ओन लाइव ऑडियो कन्वर्सेशन।